इशिका के बहुत ज्यादा जिद करने पर अभिमन्यु उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो आया था। वहां जाकर अभिमन्यु ने क्लर्क से कुछ पूछताछ की और फिर उसे अपना सर्टिफिकेट दे दिया। क्लर्क जब तक उनकी डिटेल्स कंप्यूटर में डालकर चेक कर रहा था, तब तक अभिमन्यु और पृथ्वी दोनों एकटक उसे ही देख रहे थे। फिर अभिमन्यु की नज़र इशिका पर गई, जो कि बेपरवाह खड़ी थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, मुझे क्यों डर लग रहा है? ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कभी इससे कोई शादी नहीं की है, इसके चक्कर में मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी मिस हो गई। पृथ्वी ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया वो क्या सोच रहा था। पृथ्वी ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, डोंट वरी सर, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो अपनी तरफ से केस तैयार कर रहा है। मिस सिंघानिया ने पिछले दिनों आपको जिस तरह से परेशान किया था, उन सबकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली गई है। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें क्लर्क की एक रूखी और तेज आवाज सुनाई दी। ये पूरी तरह असली है, क्लर्क ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी थी। उनका मैरिज सर्टिफिकेट 100% सही था। अभिमन्यु और पृथ्वी हैरानी से क्लर्क की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे मानो उनके पैरों तले जमीन खींच ली गई हो। पृथ्वी हड़बड़ाकर बोला, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने गलत डेटा डाला हो। पृथ्वी की बात सुनकर क्लर्क और चिढ़ गया। वो हल्की तेज आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप, हम यहाँ दिन रात काम करते हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा, शादी का मामला है, मैंने हर एक डिटेल अच्छे से डाली है, और इन दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा। चाहे तो जिस दिन उनकी शादी रजिस्टर हुई थी उस दिन के पेपर देख लीजिए, दोनों के साइन मिल जाएंगे आपको। क्या, दोनों के साइन? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। अभिमन्यु और ऋषिका दोनों एक साथ बोले, मुझे उन पेपर्स को अभी इसी वक्त देखना है। अभिमन्यु और ऋषिका ने उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थीं। क्लर्क खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, पति पत्नी के बीच में ये केमिस्ट्री होना ज़रूरी होता है। क्लर्क के जाने के बाद अभिमन्यु और ऋषिका एक दूसरे से नज़रें जुड़ा रहे थे। पृथ्वी को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु और ऋषिका सच में शादीशुदा हैं। लगभग 15 मिनट बाद क्लर्क एक फाइल के साथ पहुंचा और उन लोगों को उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाया। इशिका ने उसमें अपने साइन को देखा और मन ही मन कहा, ये तो मेरी ही सिग्नेचर है, फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कब आई थी और इस इंसान से कब शादी की थी। अभिमन्यु भी अपने सिग्नेचर को देख रहा था। पृथ्वी ने उससे कहा, मैं काफ़ी सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, नींद से जगाकर भी कोई आपके साइन दिखाकर पूछेगा तो बता सकता हूँ कि कौन से असली हैं और कौन से जाली, ये आप ही के साइन है सर। मुझे दिख रहा है पृथ्वी, अभिमन्यु थोड़ा चिढ़कर बोला। अपनी शादी का सच सामने आते ही इशिका और अभिमन्यु दोनों ही परेशान हो गए थे। इशिका ने क्लर्क से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उस दिन की फुटेज देख सकते हैं, हम इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हम लोग 6 महीने से ज़्यादा की फुटेज नहीं रखते हैं, फिर आपकी शादी तो 2 साल पुरानी है, कुछ हुआ है क्या जो इतने सबूत मांगे जा रहे हैं? क्लर्क ने भौं उठाकर पूछा। क्या सच में ये शादी असली ही है ना? इशिका ने कन्फर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा। कितनी बार बताऊं कि जब तक दूल्हा दुल्हन यहाँ पर मौजूद नहीं होते तब तक शादी नहीं की जा सकती, आपके साइन है, आप लोगों ने अपने साइन को पहचान लिया है तो शादी भी असली ही होगी ना? क्लर्क ने फिर से वही रटी रटाई बात बोल दी थी। अभिमन्यु, इशिका या पृथ्वी, तीनों में से ही आगे कोई कुछ नहीं बोला और मायूस चेहरे के साथ बाहर की तरफ आ गए थे। अभिमन्यु को तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इशिका उसकी पत्नी है। तीनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी, जिसे तोड़ते हुए पृथ्वी ने पूछा, सच तो सामने आ गया है, अब आगे क्या करना है सर? मुझे डिवोर्स चाहिए, अभिमन्यु और ऋषिका एक बार फिर से एक साथ बोले। उन दोनों को ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए पृथ्वी जल्दी से बोला, आप दोनों ही डिवोर्स के फेवर में हैं तो मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ, क्या अभी डिवोर्स करवाना चाहते हो या थोड़ा रुकना चाहते हो? मुझे पहले डिवोर्स करवाना है, ऋषिका ने जल्दी से कहा, मानो वो शादी साबित करने से ज्यादा तलाक लेने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो फिर हम लॉयर से बात करके अपनी अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल कर देते हैं, हमारी जो भी शर्त होगी उसके बारे में हमारे लॉयर्स आपस में बात कर लेंगे। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हारे पास लॉयर को देने के लिए फीस है? पृथ्वी ने इशिका का मजाक बनाते हुए कहा। इशिका अब तक उसे अलग अलग जगह पार्ट टाइम जॉब करती हुई ही दिखाई दी थी, तो उसके हिसाब से इशिका के पास ना तो कोई परमानेंट जॉब थी और ना ही पैसे। अभिमन्यु भी उसकी बात से सहमत था, पर वो इस मामले में इशिका की कोई मदद नहीं कर सकता था। इशिका ने बात को टालने के लिए कहा, खैर छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करते हैं मिस्टर राजवंश, मुझे आपका प्राइवेट नंबर चाहिए ताकि जब भी आपसे इस बारे में बात करनी हो तो मुझे दिक्कत ना हो। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकाला। इशिका भी अपने मोबाइल स्क्रीन खोलकर उसके पास खड़ी थी। जैसे ही अभिमन्यु ने अपने नंबर बताए और इशिका ने उन्हें टाइप किया तो उसका कॉन्टैक्ट खुल गया था, जो इशिका ने पहले ही सेव कर लिया था। क्यूट दादी का लापरवाह पोता। अभिमन्यु ने अपने नंबर देखे जो इशिका ने इस नाम से सेव कर रखे थे। इशिका जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, वो मुझे पहले तुम्हारा नाम पता नहीं था ना, इसलिए गलती से हुआ, मैं इसे अभी बदल लेती हूँ। इशिका ने अपनी मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा सा टेढ़ा किया और अभिमन्यु का नाम चीकू के नाम से सेव कर लिया था। नंबर सेव करने के बाद इशिका ने अभिमन्यु से कहा, अभी तो हमारा मिलना लगा रहेगा, चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने लिए टैक्सी ली और वहां से चली गई। इशिका के जाने के बाद पृथ्वी जल्दी से बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो लड़की आपकी वाइफ है, मतलब वो सच बोल रही थी, आप दोनों सच में शादीशुदा हैं सर। अभिमन्यु को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से पृथ्वी की बात उसके गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी। उसने बात बदलते हुए सख्त अंदाज में कहा, मुंबई के सबसे फेमस और बड़े डिवोर्स लॉयर को हायर करो, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से अलग होना है, इससे पहले कि ये न्यूज़ पब्लिक हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, पृथ्वी बोला। बातें करते हुए अभिमन्यु और पृथ्वी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अभिमन्यु बिल्कुल शांत था, तो वहीं पृथ्वी बोला, लड़की काफी तेज निकली सर, काफी सोच समझ कर प्लान किया है उसने सब कुछ, पहले आपके साथ शादी साबित करने में लगी रही और अब जब सच सामने आ गया तो जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना चाहती है, पक्का डिवोर्स के जरिए आपकी आधी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगी, वो भी एक अच्छा लॉयर हायर करने वाली है, हालांकि उसके पास इसके लिए पैसे ना ही हो, डिवोर्स में अच्छी खासी रकम मिल ही जाएगी, उससे डिवोर्स का खर्चा तो आराम से निकल ही जाएगा। पृथ्वी लगातार इशिका की बुराइयां किए जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही पृथ्वी बोला, डिवोर्स लॉयर से मैं पहले ही बात कर लूंगा और ये कन्फर्म कर लूंगा कि उसे एक फूटी कौड़ी भी ना मिले।
वहीं दूसरी तरफ इशिका टैक्सी में थी, वो दिशांक के साथ कॉल पर थी। उसने कहा, अच्छे लॉयर को हायर करो दिशांक, और उसे बोल देना कि शर्तों में सबसे पहले यही होना चाहिए कि उसे मेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया है और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई उस अभिमन्यु राजवंश जैसे घमंडी इंसान के पास जाए। हाँ ठीक है, वो मैं कर लूंगा, दिशांक ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, तो सच में आप उसके साथ शादीशुदा हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दोनों को ही कुछ याद नहीं है? दादी को अल्जाइमर है, लेकिन कहीं आप लोग भी डिमेंशिया के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। इशिका को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, क्या लगता है दिशांक, कोई लव स्टोरी चल रही है जहाँ अचानक से एक पति टपक गया और याद नहीं कहाँ से आया? दिशांक उसकी बात सुनकर हल्के से हंसा और मजाकिया लहजे में बोला, हाँ ये एक लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ काफी रोमांटिक लग रहा है। कितना अच्छा होता जो सिविल अफेयर ब्यूरो वाले मेरे लिए एक खूबसूरत सी लड़की भेजते, अमीर ना हो तो भी चलेगी पर सुंदर होनी चाहिए। इशिका उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी, वो थोड़ा इरिटेट फील कर रही थी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इशिका ने आह भरते हुए कहा, हम दोनों को ही याद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे थोड़ा ही सही कुछ याद है। और आप किसकी बात कर रही हैं? दिशांक ने चौंकते हुए पूछा। मैं मिसेज वसुधा राजवंश की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा बहुत कुछ याद है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो भूल गई हैं, इशिका ने जवाब दिया। हाँ उन्हें अल्जाइमर है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, दिशांक ने अफसोस जताते हुए कहा। अचानक इशिका को कुछ याद आया तो वो दिशांक से बोली, अच्छा जो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन बन रही हैं, क्या उनके टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं? हमें इस मामले में जल्दी करनी होगी वरना देर हो जाएगी। आप क्या बोल रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिशांक कंफ्यूज होकर बोला। अचानक इशिका ने बात तो बदल दी कि वो किस बारे में बात कर रही थी, अब दिशांक को वो भी नहीं समझ आया। खैर छोड़ो, मुझे इस वक्त थोड़े आराम की जरूरत है, डिवोर्स लॉयर से बात कर लेना, इशिका ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। इशिका वहां से सीधे अपने घर पहुंची। उसे आज घर थोड़ा खाली लग रहा था क्योंकि वहां वसुधा नहीं थी, इसलिए कई दिनों से वो वसुधा के साथ रह रही थी तो इशिका को उनके साथ रहने की आदत हो गई थी। इशिका जैसे ही अपने बेडरूम में गई, उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी वसुधा राजवंश पर गई, जिन्होंने अपने साथ में एक बड़ा सा सूटकेस ले रखा था। वसुधा इशिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बहू तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इस बार मैं काफ़ी सारे कपड़े और अपना सारा सामान लेकर आई हूँ तो मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वसुधा को अचानक अपने सामने देखकर इशिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो दौड़कर उनके गले लग गईं। दादी को भले ही कुछ याद न रहता हो, लेकिन वो इशिका की काफ़ी अच्छे से केयर करती थीं। इतने सालों तक इशिका ने जिस प्यार को मिस किया था वो उसे वसुधा के रूप में मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े लॉ फर्म में वहां के दो बड़े फेमस वकीलों को इशिका और अभिमन्यु के तलाक के लिए हायर किया गया था। डिवोर्स लेने वालों के नाम अभी हाइड रखे गए थे। दोनों लॉयर आपस में बैठकर इस केस पर डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक हंसकर बोला, अजीब शर्तें हैं दोनों की, दोनों अपने पैसों से एक आना भी एक दूसरे को नहीं देना चाहते। हाँ दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते होंगे, हमें क्या, उनकी शर्तें देखकर लग रहा है कि दोनों ही पैसे वाले हैं और हमें पैसे कमाने से मतलब है,
चलो उनके हिसाब से क्लॉज बनाकर इन्हें भेजते हैं। दूसरे लॉयर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिविल अफेयर्स ब्यूरो से लौटने के बाद अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास घर से वसुधा के केयरटेकर का कॉल आया। उसने बताया कि वो फिर से सामान लेकर अपने पोते की बहू के पास चली गई है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और बोला, अब तो उसे समझ जाना चाहिए कि दादी को रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। फिर भी उसने दादी को अपने साथ आने दिया। अजीब लापरवाह लड़की है। अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था। उसने ईशिका को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तभी ईशिका की चैट को उसने खोल लिया था। अभिमन्यु को अब बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। पहले उसे ईशिका से बात करना अच्छा लगता था, वो उसे किसी दोस्त की तरह लगती थी। अब वो उसे मैसेज करने में काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की वही है जो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने इसे अपना दोस्त समझा था और ये मुझसे मेरी ही बुराइयां किए जा रही थी। उस दिन होटल में मैंने उसे कमरे से बाहर निकाला था और बाहर आकर उसने अपनी सारी भड़ास मुझ पर ही निकाल दी थी। मुझसे मेरी ही शिकायत किए जा रही थी और मैं बेवकूफ़ की तरह खुद की बुराई कर रहा था, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु का ईशिका से बात करना जरूरी भी था और अभिमन्यु उसे मैसेज भी नहीं कर पा रहा था। तभी ईशिका का मैसेज आया। उसने लिखा था, मिस्टर राजवंश, मैं आपको अपनी तलाक की सारी की शर्तें भेज रही हूँ। आप प्लीज जिस कॉलम में एलिमनी और शादी के बाद जो भी मेंटेनेंस दिया जाता है उसे सेक्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। मुझे उसमें कोई ढील नहीं चाहिए। मैसेज पढ़ने के बाद अभिमन्यु को और गुस्सा आने लगा। वो बोला, ओ तभी इस लड़की को मुझे जल्दी तलाक चाहिए था। मेरा शक सही निकला, ये पैसों के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। अभिमन्यु ने बिना पढ़े ही गलत राय बना ली थी। अभिमन्यु कुछ करता उससे पहले पृथ्वी इसके केबिन में आया। वो हल्का हाँफते हुए बोला, सर मैंने आप दोनों की शादी के सच के बारे में पता लगा लिया है। आज के लिए इतना ही, वैसे भी काफी बड़ा पार्ट हो गया है। अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। चलो शादी तो साबित हो गई, लेकिन आप दोनों के बीच बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है।